India Dash Forum. India Dash Forums.com.
A very talented, humble, and a self-made man. That is the thought that comes to mind when you hear the name of Sameer. The renowned lyricist whose real name is Sheetla Pandey. Even though his father Anjan was one of the most sought-after lyricists of his time, he was very much against Sameer trying out his luck in this big, bad world of Bollywood and opposed it totally. Through sheer determination and grit, with talent as his primary source, Sameer started his Anjan journey, struggled his way from nowhere to the top, totally on his own merit, and let his lyrics of more than 3,500 songs so far talk for him. It is said that when Sameer pens lyrics, music wraps itself around it to create a unique and soulful musical harmony. Happy, sad, peppy, silly, romantic, he has left his footprints in all the categories. What made him famous? His lyrics for the 3,500 plus songs, his versatility, and his achievement of having worked with a maximum number of music directors from the Gori Pareshan Hai, Kali Pareshan Hai to the latest Savariya. The journey has its own tale to tell. A man of substance, a man of many words. This is Sameer. Welcome Sameerji to our forum, and it's such a big pleasure to have you with us today.
Thank you very much. I'm from here and I'm enjoying and I'm very grateful that you are interviewing me. And I just want to tell my listeners just the kind of love they are giving me. I will pray to God that they have to continue that. And definitely whatever you want, I'm ready to give your answer and all.
Thank you so much, Sameerji. Sameerji, pehle aap ye bataen ki how did the pen name Sameer happen? आपका नाम तो शीतला पांडे है, जैसे कि हमें
लॉन्ग लॉन्ग स्टोरी, मैं अगर इसके बारे में बताने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, मगर ये बस केवल इतना कहना चाहूंगा कि ये किसी का दिया हुआ नाम है और जिससे मैं लाइफ में बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, जिसने मुझे शायर बनाया है एक तरह से, अगर मैं कहूँ बट लाइन बहुत अच्छी है कि इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो।
जी, तो आप हमें बताना चाहेंगे कि वो कौन है जो आपके इतने बड़े इंस्पिरेशन?
कि क्या मैं कुछ नाम बहुत याद आते हैं, हर सुबह बहुत याद आते हैं, हर शाम बहुत याद आते हैं, मगर कुछ नाम जो हैं वो उनको मैं उनका खुलासा नहीं करना चाहता, उनको नुमाया नहीं करना चाहता, तो बेहतर यही है कि लोग केवल ज्ञान के खुश हों कि हाँ किसी के द्वारा दिया हुआ नाम है।
अच्छा, तो हमें ये बताइए कि व्हाट इज द मंत्र ऑफ योर लाइफ, आप किस नजरिए से लाइफ को जीते हैं?
हाँ, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मंत्र, अगर मैं जो मेरे एडमायरर हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे फैंस हैं या जो आने वाली जनरेशन हैं, उनके लिए मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो गीता का श्लोक है कि कर्मणे वाधिकार अस्ते मा फले सुखदाचनम, तो जिंदगी में अगर आप कर्म करेंगे, जैसी मेहनत आप करेंगे वैसा फल आपको मिलने वाला है। ऊपर वाले ने आपके हाथ में केवल एक ही ताकत दी है और सारी ताकतें उसने अपने पास रखी हुई हैं, और वो ताकत है आपके कर्म की, आपकी मेहनत की, आपके डिटर्मिनेशन की। तो जिंदगी में सबसे जरूरी है कि आप जिस चीज के लिए डिटर्मिन हो उसके लिए आगे बढ़ते रहें, और ईश्वर जरूर आपको कहीं न कहीं आपकी मंजिल तक ले जाएगा, और आप देखेंगे कि जितनी आप मेहनत करेंगे उतना फल आपको मिलेगा। तो मेरी सफलता का जो सबसे बड़ा मापदंड है डेफिनेटली, उसमें मेरे जो फैंस हैं, मेरे माता पिता, मेरे तमाम वेल विशर्स, उनकी दुआएं और मेरी अपनी मेहनत और ऊपर वाले की मेहर।
समीर जी, ये बताइए कि हम तो जानते हैं आप इतना खूबसूरत लिखते हैं, यू राइट सो ब्यूटिफुली, आपने इंडस्ट्री को एक नया मोड़ दिया है, अपने रंग से ढाला है, बट हु इज रियल समीर? आप अपार्ट फ्रॉम द लिरिसिस्ट दैट यू आर, हमें कुछ अपने बारे में बताइए प्लीज।
देखिए, जब मेरा एक शेर बहुत अच्छा है कि जब भी तन्हाई से मुलाकात होती है, जब भी तन्हाई से मुलाकात होती है, अक्सर अपने बारे में बात होती है। तो जिंदगी को मैंने जब जितना देखा, जितना परखा, जितना जाना, तो मैंने अपनी परिभाषा केवल अपने शेर से मैंने जिसको पढ़ पढ़ के जिसको लिख के मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ मैं सुनाना चाहूंगा आपको जरूर, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी अपनी परिभाषा क्या है, मैं अपने आप को क्या मानता हूँ, मैं क्या समझता हूँ कि न पूछो कि है मेरी मंजिल कहाँ, अभी तो सफर का इरादा किया है। न पूछो कि है मेरी मंजिल कहाँ, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा मैं हौसला उम्र भर, किसी से नहीं खुद से वादा किया।
समीर जी,
तो समीर इन टोटैलिटी में यही है जो मैंने आपसे कहा।
बहुत अच्छा लगा, इट्स एन ऑनर कि आप हमारे साथ आज हैं और हमें इतने खूबसूरत शेर सुना रहे हैं। तो हमें ये बताइए कि आपने तो कॉमर्स में अपनी मास्टर्स की है, सो व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट, आपने कॉमर्स चुना फिर आप म्यूजिक में आए, तो ये ट्रांजिशन?
हाँ
जी, ये बिल्कुल ही अलग, दो अलग चीजें हैं।
कॉन्ट्रास्ट था और कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि मेरी स्टडी कुछ थी, मेरा प्रोफेशन कुछ हो गया। बट एक बात बताऊं आपको कि मेरे शायद परंपराओं में ऐसा रहा है कि मेरे पिताजी भी बीकॉम करके शायर बने थे, और शुरू में मेरे ख्याल से जब उन्होंने पढ़ाई की बीकॉम उन्होंने किया तो डेफिनेटली उन्होंने ये सोच के बीकॉम किया होगा, क्योंकि हमारे जो ग्रैंड फादर थे वो बैंक में काम करते थे, तो कहीं ना उनके दिलो दिमाग में बात रही होगी कहीं बैंक में सर्विस कर लेंगे या कोई बिजनेस के बारे में सोचेंगे। मगर जो आबो हवा है आपको जहां ले जाना चाहती है ले जाती है, और वो बॉम्बे आ गए, और उनके बॉम्बे आने के पीछे उनकी बीमारी जो थी उनकी एक मजबूरी थी, क्योंकि वो अस्थमा के पेशेंट थे और डॉक्टरों ने बोला कि आप किसी समंदर किनारे अगर नहीं गए तो आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। और मेरे ख्याल से यही वजह है जिसकी वजह से वो उनको यहाँ शहर छोड़ के यहाँ आना पड़ा। तो मेरे ख्याल से दैट वॉज द रीजन वाई ही केम हियर। मगर उनके आने के बाद जब मैंने पढ़ाई शुरू की तो मेरा भी बिल्कुल मेरा ख्याल कभी नहीं था कि मैं शायर बनूंगा या मैं फिल्मों में जाके गीतकार की तरह से अपने आप को स्थापित करूंगा। मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, और वही वजह थी क्योंकि पापा चाहते थे कि मैं सीए बनूं या कहीं सर्विस कर लूं या कोई बिजनेस करूं, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा था कि आप कॉमर्स पढ़िए। मगर मुझे ऐसा लगा सेकेंड ईयर के बाद कि शायरी जो है कहीं न कहीं मेरी रगों में थी, विरासत में मिली हुई है शायरी, क्योंकि पिताजी खुद गीतकार थे तो कहीं न कहीं उनका लहू जो था वो मेरी जहन में दौड़ रहा था। और उनके खिलाफ मैं बॉम्बे आया और मैंने अपना संघर्ष अपनी तरह से किया। मगर डेफिनेटली इसी ये मुझसे सब जब सवाल किया जाता है भाई आपने पढ़ाई कॉमर्स की थी और आ गए आप लिटरेचर की लाइन में, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो चीज है जो क्रिएशन जो है उसका किसी पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं है, मुझे लगता है गॉड गिफ्टेड चीज है और डेफिनेटली इसको डेवलप करना पड़ता है। आप जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है उस चीज को आपको डेवलप करना पड़ता है, फिर आपका शौक जो है कई बार आपकी पढ़ाई पे आपकी दिशा पे और आप जिधर जाना चाहते हैं उस पर हावी हो जाता है, और आप जो बनना चाहते हैं वो न बन के जो न बनना चाहते हैं वो बन जाते।
जी सही कह रहे हैं आप। अच्छा हमें ये बताइए समीर जी कि कभी भी अनजान जी के बेटे होने का आपको कोई फायदा मिला, कभी आपको इस बारे में आगे बढ़ने का कोई मौका मिला?
देखिए क्या होता है, आप जब किसी सेलिब्रिटी के बेटे होते हैं तो उसके नाम का आपको फायदा भी होता है नुकसान भी होता है। मैं आपको बताऊंगा फायदा किस सेंस में होता है, क्योंकि लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, लोग आपको आदर देते हैं, लोग आपसे थोड़ा इजी तरह से मिल लेते हैं। और नुकसान इस मायने में है कि लोग आपको ये समझते हैं कि चूंकि आप उसके बेटे हैं इसलिए आप इस लाइन में आए हैं, इसलिए आप गीतकार बनना चाहते हैं। तो पिताजी का नाम मेरे लिए वरदान और अभिशाप दोनों रहा, क्योंकि लोग मुझे मिले तो बहुत प्यार से, लोगों ने मुझे इज्जत तो दी, मगर लोगों को उस वक्त ऐसा लगता था कि पापा बहुत बिजी हैं और वो मुझे शायर बनाना चाहते हैं और शायद मुझे घोस्ट राइटर बना के रखना चाहते हैं, इसलिए लोगों ने मुझे आजमाया बहुत, मुझे बार बार सिटिंग में बुलाया गया, मुझे कई बार तोला गया कि मुझे लिखना आता है या नहीं आता है। तो उन मुश्किलों से मुझे गुजरना पड़ा, और मेरा एक मानना है कि चाहे वो अभिषेक बच्चन हो या संजय दत्त हो या कुमार गौरव हो, जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज के बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पिता का नाम केवल आपके काम नहीं आ सकता, आपका अपना टैलेंट होना बहुत जरूरी है। और आपको अपने पैरों पे ही खड़े होकर आगे बढ़ना पड़ता है।
जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब आपने बहुत अच्छे एग्जांपल्स लिए संजय दत्त और कुमार गौरव का, कुछ हद तक शायद लग भी है। तो ये बताइए समीर जी, आप तो अभी बहुत सालों से हैं इंडस्ट्री में, आपने बहुत कुछ देखा है, तो आपको क्या लगता है हमारे जो पुराने काल में म्यूजिक हुआ करता था और आज की जो हमारी म्यूजिक है उसमें डिफरेंस और उनमें लिरिक्स का जो फर्क आया है उसमें आज के जमाने में लिरिक्स का कितना हाथ है?
देखिए परेश, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो परिवर्तन आया है वो क्यों आया है। वो आया इसलिए है क्योंकि परिवर्तन केवल गानों में लिरिक्स में नहीं आया है, पूरे समाज में, पूरे देश में, पूरे परिवेश में एक परिवर्तन है। और जब परिवर्तन जब एक जगह होता है तो उसका असर हर जगह पड़ता है, चाहे वो सोशल एलिमेंट्स हों या वो टेक्निकल एलिमेंट, कहीं भी वो जिंदगी के हर मोड़ पे उसका प्रभाव नजर आता है। और वो प्रभाव जो है लिरिक्स में भी आया है। हमारे यहाँ एक बड़ी अजीब सी टेंडेंसी है, जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो लोगों के दिलो दिमाग में बात होती है, हिंदुस्तान में एक बड़ा अजीब सा लोगों के दिमाग पे एक चीज असर कर गई है कि जो गुजर गया वो अच्छा था, जो चल रहा है वो बुरा है, इस मान्यता के साथ लोग जीते हैं। और ये सबसे बड़ी कमजोरी है उनकी, जबकि इस मान्यता के साथ जो जीते हैं वो पास्ट में जीते हैं, मेरा ऐसा मानना है। जो प्रेजेंट में जीते हैं वो हमेशा इस बात पे यकीन रखते हैं कि जो चल रहा है वही अच्छा है, क्योंकि अगर नहीं अच्छा होता तो चलता नहीं। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यही है कि जो एक तो मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि जो चल रहा है वो अच्छा है, मैं इस बात को कभी नहीं मानता कि जो गुजरा म्यूजिक था वही अच्छा है, जो आज चल रहा है वो नहीं है। दूसरी बात रही कि जो परिवर्तन है, क्योंकि हर जनरेशन जब आती है, क्योंकि मैंने करीब तकरीबन तीन जनरेशन के साथ काम किया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिर नदीम श्रवण और अब मैं हिमेश रेशमिया के साथ काम कर रहा हूँ, तो इन तीनों के बीच जो परिवर्तन था, जो चेंज ओवर मैंने देखा है, तो मैंने महसूस किया कि हर जनरेशन के लोग अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपनी ये खुशबू लेके आते हैं, उसके साथ जीते हैं और उसी के साथ अपने पास्ट में चले जाते हैं, अपने सेनार में चले जाते हैं और उसी में जीते रहते हैं। बहुत चंद ऐसे लोग होते हैं जो उस दीवार को तोड़ के उसके आगे बढ़ते हैं, जो वक्त के साथ मूव करते हैं। तकलीफ उसमें बहुत होती है क्योंकि अपने आप को तोड़ना पड़ता है, आपको अपने आप को नए रंगों में ढालना पड़ता है। ये कहना बहुत आसान है कि मैंने आशिकी लिखी, साजन लिखी, दीवाना लिखी, तो लिखी। अब ये जानना जरूरी, मैं लिख क्या रहा हूँ? पीपुल आर मोर अवेयर कि भैया आप लिख क्या रहे हो, आपने जो कल खाया वो खा लिया, आज क्या खाएंगे इसके बारे में सोचना ज्यादा जरूरी है। तो मैं हमेशा इस चीज पे यकीन रखता हूँ और मेरे ख्याल से उसी परिवर्तन का असर है लिरिक्स का, जो बदलाव आया है। और जो जहां तक आपने पूछा कि कितना बड़ा हाथ है लिरिक्स का, सदियों से इस बात का गवाह है ये पूरा हमारा कुनबा, हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री, कि म्यूजिक के बगैर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बनना चलना इम्पॉसिबल है। और उसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन पहले भी रहा है, अब भी है और आने वाले दिनों में भी रहेगा।
अच्छा, आपने इतने सारे गाने लिखे हैं और हम सबको पता है कि एनी मेमोरेबल सॉन्ग, जो सॉन्ग रह जाता है हर जेनरेशन के लिए, इट शुड हैव गुड लिरिक्स, ग्रेट कॉम्पोजिशन, बैकग्राउंड स्कोर एंड जस्ट द राइट वॉयस टू कैरी द सोल ऑफ द सॉन्ग, है ना? पूरे सारे गाने को इकट्ठे, एक गाने को इकट्ठा करने के लिए सबकी उतनी ही देन होती है। सो आपके हिसाब से आपका लिखा हुआ ऐसा कौन सा गाना है जो आपको लगता है, या एक से ज्यादा भी हो, तो ऐसे कौन से गाने हैं जो आपको लगता है कि इन सभी डिपार्टमेंट्स में उसमें
इतने गाने, जैसे आपने कहा कि किसी एक दो गाने का जिक्र करना बड़ा मुश्किल है, मगर मैं चंद फिल्मों का जिक्र जरूर करूंगा जिन पे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि उनमें ये तमाम चीजें एक साथ 100% इम्पैक्ट के साथ आई थी, इसीलिए इतनी बड़ी थी। हमारे यहाँ कहावत है, जब भी कोई फिल्म चलती है तो लोग एक बार बोलते हैं कि इट्स अ टीम एफर्ट। टीम एफर्ट का मतलब ही होता है कि फ्रॉम स्टार्ट बॉय टू स्टार एवरीबडी हैज कंट्रीब्यूटेड एब्सोल्यूटली इन करेक्ट मैनर। सो वही होता है, चाहे म्यूजिक का हो, चाहे परफॉर्मेंस हो, डायरेक्शन हो, हर डिपार्टमेंट के बारे में टीम वर्क। तो मेरे ख्याल से मेरी ये चंद फिल्में, जैसे कि पहली मेरी सुपरहिट फिल्म थी जिसने मुझे सफलता की पहली राह दिखाई, वो थी दिल, उसके बाद आशिकी आई, उसके बाद साजन, दीवाना, फिर आप राजा हिंदुस्तानी, फिर आप कुछ कुछ होता है, फिर राज, फिर तेरे नाम, और उसके बाद कभी खुशी कभी गम। ये चंद फिल्में ऐसी नहीं हैं जिसमें मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इनमें सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन जो है वो 100% रहा है, इसीलिए उसका रिकॉर्ड भी 100% रहा।
जी, आपका कोई पर्सनल फेवरेट एज समीर, मतलब एज अ पर्सन?
डेफिनेटली एक गाना मुझे बेहद पसंद है, वो बहुत फिल्म बड़ी सक्सेसफुल नहीं थी, मगर पता नहीं वो गाना मुझे क्या, मेरे जितने फैंस हैं उनको भी बहुत पसंद है। वो फिल्म थी वंस, और उसका गाना है जो बाला सुब्रमण्यम और लता जी ने गाया है कि आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, मेरे मन को महकाए तेरे मन की कस्तूरी।
हाँ सही, बहुत ही खूबसूरत गाना है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब बहुत खूबसूरत गाना है। सो अच्छा, आपके हिसाब से आप ऐसा कौन सा टाइम पीरियड है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आपका सबसे अच्छा, आपने आपका प्रोडक्टिवनेस उस वक्त सबसे अच्छा रहा है या है, मतलब ऐसा कोई पीरियड है जिसमें आपने, आपको ऐसा लगा कि आपके सारे सारे के सारे जितने भी आपने भरे हैं वो बहुत अच्छे हैं, जितने भी गाने लिखे हैं वो बहुत अच्छे हैं?
डेफिनेटली वो 90s का पीरियड जो 89 से जहां से शुरू हुई थी दिल, जब रिलीज हुई थी, 90 से लेके तकरीबन मेरे ख्याल से 2002-2003 तक का पीरियड जो था वो बहुत ही खूबसूरत पीरियड था, और उसमें मैंने मैक्सिमम काम भी किया। मेरे ख्याल से 90% जो अब तक का काम है उसी पीरियड में हुआ है, और ऊपर वाले का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, क्योंकि आज भी आई एम द ओनली राइटर जिसके पास मैंने मेरे ख्याल से हमेशा काम रहा है। तमाम म्यूजिक डायरेक्टर्स ने, तमाम लोगों ने मुझे उतना ही प्यार दिया है। तो 89 के बाद अभी तक तो पीछे मुड़ के देखने का मौका कभी ऊपर वाले ने नहीं दिखाया, मगर मेरे ख्याल से जो मैक्सिमम काम किया मैंने उन 10 सालों में, जो काम हुआ है 12 सालों में, दैट वॉज द बेस्ट पीरियड।
ऐसा कोई गाना आपको ध्यान में आता है जो आपने लिखा हो और बाद में आपको बड़ा पछतावा हुआ कि सही नहीं हुआ, मतलब मैं और अच्छा कर सकता था या इसमें कुछ गलत लिख दिया, गलत हो गया, कुछ ऐसे गाने?
हाँ नहीं, देखिए क्या होता है, क्रिएटिविटी एक ऐसी लाइन है जहाँ आप कितना भी अच्छा काम कर जाओ कहीं न कहीं आपको रहता है कि भैया मैं इससे बेहतर कर सकता था, और मुझे लगता है वो जो प्यास है उससे बेहतर कर जाने की, वही आपको जिंदा रखती है, वही आपको बेहतर से बेहतर काम करवाती रहती है। तो डेफिनेटली ऐसा कई बार लगा कि अगर इस गाने के लिए मुझे थोड़ा वक्त ज्यादा मिलता तो मैं बेहतर कर सकता था, या मुझे लगा कि अगर ये सब्जेक्ट थोड़ा कुछ और तरह का होता तो मुझे बहुत अच्छा मौका था, मैं और कुछ कर सकता था, मगर कभी ये कोई गाना मेरा, मुझे इतने भी गाने मैंने लिखे, कभी मुझे किसी भी गाने को लिख के ये नहीं हुआ कि अरे मैंने क्या लिख दिया तो बहुत ही खराब गाना, क्योंकि मेरी शुरू से मान्यता रही है कि जब तक मैं कन्विंस नहीं होता हूं मैं वो गाना बाहर आने ही नहीं देता हूं, तो वो उस तरह की शिकायत होने का कोई मौका
नहीं। और कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई गाना लिखने को कहा गया, आपको एक म्यूजिक के लिए बोला गया कि आप लिरिक्स लिखो और आपको राइटर्स ब्लॉक का सामना करना पड़ा? यू नो लाइक होता है सभी राइटर्स के साथ होता है कि जैसा आप चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप क्या कर, कभी ऐसा वक्त आया आपके पास और ऐसा होता है तो आप क्या करते हैं?
देखिए मेरे फादर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि इंडस्ट्री में एक बड़ा अच्छा जुमला काम करता है, कन्विंस आर बी कन्विंस, इसके बाद का जो रास्ता है वो लड़ाई का रास्ता है, तो टूटने का रास्ता है, लड़ने का रास्ता है, या तो आप कन्विंस हो जाओ या सामने वाले को कन्विंस कर दो। तो मैं हमेशा इसी तरह से काम करता हूं, मैं कोशिश से करता हूं, अगर मुझे लगता है डायरेक्टर गलत है तो मैं उसको कन्विंस करने की कोशिश करता हूं, और अगर मुझे लगता है जो डायरेक्टर बात कह रहा है वो कन्विंसिंग है तो मैं खुद अपने आप को कन्विंस कर लेता हूं।
नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि कभी कभी होता है जैसे आपको कोई गाना लिखना है किसी सब्जेक्ट के ऊपर, आप लिखने बैठे हैं और वो आप जैसा चाह रहे हैं वैसा हो नहीं रहा, आप शायद वो शब्द नहीं मिल रहे हैं।
बहुत बार ऐसा तो बहुत होता है, क्योंकि बहुत सारे गानों में ऐसा होता है कि आप बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत कोशिश करके नहीं होता, फिर किसी वक्त ट्राई करते हैं, फिर किसी वक्त ट्राई करते हैं, तो फिर कोशिश करते रहते हैं। बहुत से गानों में ऐसा होता है कि आप इमीडिएट सोचने बैठते हैं और चीजें आ जाती हैं, बहुत बार ऐसा लगता है कि आप 10-10 दिन तक सोचते हैं और वो चीज नहीं आती तो तकलीफ देती है, मगर दैट इज द वे, देर इज नो पेन देन देर इज नो गेन, यू नो दैट, दैट इज अ वेरी पॉपुलर जुमला।
हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में अच्छा, आप अपने ये बताइए हमारे पर्सनल, आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? पोएट्री लिखने के अलावा?
हाँ, मुझे पढ़ने का एक तो बड़ा शौक है। मैं किताबें, कोई भी किताब हो, ऐसा नहीं कि मैं पोएट्री की किताबें ही पढ़ता हूँ। नावल हो, मैगजीन हो, पेपर हो, न्यूज़पेपर हो, जो भी मुझे मिलता है तो पढ़ने का मुझे बड़ा शौक है। और मैं जब कभी फुर्सत होती है तो मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि मैं फैमिली को बहुत कम वक्त दे पाता हूँ, तो बच्चों को लेके कहीं भी वेर एवर आई फील आई वॉन्ट टू गो।
तो आपके दिमाग में कुछ है, आप अपने बच्चों के बारे में जब सोचते हैं तो आपके, अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि वो लिरिसिस्ट बनना चाहता है या चाहती है?
मैंने तो कभी, मैं जिंदगी में ये सीखा है कि बंदिशें कभी जो है वो कारगर नहीं होती। बच्चों को पूरी आजादी देनी चाहिए। मैंने अपने बच्चों को पूरी आजादी दे रखी है। अभी तक डेफिनेटली कहीं से मुझे कोई खुशबू नजर नहीं आ रही है कि कोई फिल्म में आना चाहता है, क्योंकि बहुत छोटा। अगर अगर वो आना चाहेंगे तो उनकी, उनका मैं वेलकम करूंगा। मैं पूरी तरह से तहे दिल से उनको कहूंगा कि आप आओ, क्योंकि मैं कभी नहीं मानता कि भैया, मेरा ये मानना है कि जैसा मैंने अपनी जिंदगी को देखा है कि आपको, आपका नसीब आपको अपनी तरफ खींच के ले जाता है। आप
जी,
आपका काम केवल उस रास्ते पे सही तरह से चलना है। बाकी मंजिल तो पहले से निर्धारित है आपको कहाँ पहुंचना है। बस आप अच्छे से सही मेहनत करते रहो, पूरे कर्मयोगी की तरह आगे बढ़ते रहो, आपको ईश्वर सफलता। तो मुझे रोकने का कोई हक ही नहीं है और मैं कभी नहीं चाहूंगा। मैं उनको मैंने पूरी आजादी दे रखी है। व्हाट एवर दे वांट टू डू दे हैव टू।
वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत बहुत खुशकिस्मत हैं आपके बच्चे। तो समीर जी, थोड़ा हम दूसरी चीजों के बारे में बात करते हैं। आप दुनिया में इतना घूमे हैं, आपको कौन सी जगह जाना बहुत अच्छा लगता है? कौन से देश में या
मुझे नेचर से बड़ा अट्रैक्शन है। मैंने सारी जगहें देखी हैं तकरीबन, मगर जहां भी मुझे नेचुरल ब्यूटी नजर आती है, मुझे वो जगहें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और मुझे तन्हाई, जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले शिमला होके आया, तो जब मैं शिमला में जाके मैं जो हिमालय पर्वत को बहुत दूर से मैंने देखा, तो मुझे लगा कि यही जगह जहां मुझे बस जाना चाहिए आके। तो मैं अमेरिका गया, मैं स्विट्जरलैंड गया, मैं न्यूजीलैंड गया हूँ। लंदन तो मैं बहुत बार जा चुका हूँ, क्योंकि नवीन भाई साहब वहां थे तो सिटिंग के लिए मुझे जाना पड़ता था। तकरीबन सारी जगह है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह मैं घूम के आया। मगर मुझे जहां भी, जैसे न्यूजीलैंड में मुझे कुछ जगह बहुत पसंद है, अमेरिका में भी कुछ जो आउटस्कर्ट्स हैं बहुत पसंद है, लंदन में भी कुछ, मगर जो भी जगह पसंद है उनमें जो सबसे खास बात है कि वो नेचुरल होनी चाहिए। वहां जो है जो वातावरण में जो है वो कहीं न कहीं एक जो नेचर की जो ब्यूटी है वो होनी बहुत जरूरी।
बहुत खूब। तो आप खाने में क्या पसंद करते हैं? आपको किस तरह का खाना?
खाना मेरा ऐसा है कि पहले तो मैं सब कुछ खाता था। मुझे नॉनवेज भी बहुत पसंद था, वेज भी पसंद था, बट अभी कुछ सालों से मैंने नॉनवेज बंद कर दिया, क्योंकि थोड़ी सी सेहत जो है वो गवारा नहीं कर रही थी ये चीजें। तो खाने में मैं बिल्कुल सादा खाना मुझे बहुत पसंद है, जो सादगी मैं अच्छा। और कमाल मेरा टेस्ट ऐसा है कि मैं हर तरह का फूड एंजॉय करता हूँ, चाहे साउथ इंडियन हो, नॉर्थ इंडियन हो, या मराठी खाना हो, गुजराती खाना हो, बंगाली खाना हो। मुझे टेस्ट चेंज करने के लिए कभी भी हो, कई बार मैं इटालियन मुझे बहुत पसंद आ जाता है, पास्ता है ना, वो सब मुझे बहुत पसंद आता है, चाइनीज बहुत पसंद है। तो जो हर तरह के खाना, मगर मैं रेगुलर वही खाना खाता हूँ जो बचपन से मैं खाता आया हूँ। नॉर्थ इंडिया से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं बनारस का रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे वो जो अपने घर का चावल दाल वो जो चीजें पसंद आती हैं। मगर कभी कभी वंस इन अ वाइल फॉर अ चेंज डेफिनेटली मैं हर तरह का खाना खाना पसंद करता हूँ।
जी अच्छा, आप म्यूजिक में ही हैं, आप हर मतलब म्यूजिक आपके चारों ओर है, लेकिन समीर जी जब म्यूजिक सुनते हैं, जब समीर जी कोई सीडी डालते हैं तो कैसा, कैसी म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं?
डेफिनेटली वो बहुत रोमांटिक होना चाहिए। और मेरा हमेशा मानना है, देखिए जब मुझसे बात की जाती है तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि बात जो है वो लफ्जों की नहीं होती, बात जज्बों की होती है। जिन गानों में वो, चाहे वो सुरेंद्र जी का बहुत सिंपल सा गाना हो या साहिर साहब का कोई बड़ा मुश्किल सा गाना हो, मगर उस गाने में कहीं न कहीं मुझे उस शायद ज्यादा उसके जज्बात जो हैं उसमें नजर आने चाहिए, जिसमें कहीं न कहीं मेरे दिल को छू जाए। जैसे कैफी साहब का गाना कि मैं ये सोच के उसके दर से उठा था, वो गाना मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जिया था, वो लिखा था। साहिब साहब का वो गाना चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, बख्शी साहब का वो गाना चिट्ठी आई है, शैलेंद्र जी का वो गाना तेरे मन की गंगा, तो ये जो गाने हैं जो कहीं न कहीं जिनका दिल से एक वास्ता है, जिनका कहीं न कहीं जज्बे से एक वास्ता है, वैसे गाने मुझे पसंद है। और वैसे ही गाने, जैसे गजल में मैं जब भी वो गजल सुनता हूँ कि चुपके चुपके रात भर आंसू बहाना याद है, तो मुझे लगता है जिस शायर ने भी ये गजल लिखी है ऐसा लगता है कि उसने गजल नहीं लिखी है, उसने जिया है और उसको पेपर पे वो रंग डाल दिया। तो ऐसी चीजें मुझे बहुत पसंद है और ऐसी चीजों को ही सुनना मैं पसंद करता हूँ।
आजकल के दौर में कोई ऐसा खास गाना जो आपको बहुत भाया हो और आप उसको बार बार सुनना पसंद करते हो?
इधर तो डेफिनेटली मैं अगर सचमुच से पूछे ईमानदारी से तो कोई ऐसा गाना करते तो आज के कुछ सालों से तो मुझे नहीं रहा। पापा का जैसे वो गाना है साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, या उनका पुराना गाना जो मुझे बहुत पसंद था आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, बट इन दिनों में डेफिनेटली मैं अगर आप मुझे सही मायने में पूछिए तो डेफिनेटली कोई ऐसा गाना नहीं है।
फिर भी हम लोग जब बैठते हैं आज भी सुनने के लिए तो पता नहीं क्यों हमारे हाथ से वो पुराने ही गाने लगते हैं, पुराने ही गाने अंदर जाते हैं, पुराने ही गाने हम बार बार सुनना पसंद करते हैं। तो ऐसा क्यों है? हालांकि नए गाने अच्छे हैं बट फिर भी आप
मैं आपसे पूछूं, मैं पूछने नहीं चाहिए मैं क्या किसी
नहीं नहीं बिल्कुल आप पूछ सकते हैं
नहीं, तो मैं आपकी उम्र के बारे में पूछूं,
मतलब
अभी की लड़कियां और दराज तो पता नहीं आप उम्र के किस मोड़ पे हैं, मगर
जी।
जैसे हम बात जब करते हैं तो नाउ आई एम 48, तो जो हमने जो म्यूजिक सुना है वो म्यूजिक है 60s का, 60s 70s तक का म्यूजिक जो है वो मेरा म्यूजिक है, जिसने मेरी रग रग में जगह बनाई हुई है। जो उसको पैदा हुआ तो मेरे कानों में जो पहला गाना गूंजता हुआ मुझे नजर आया कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तो आज भी मुझे जब वो गाना बजता है तो मैं जितने गाने मैंने लिखे हैं जो जिन लोगों ने भी लिखे हैं वो सब गाने दरकिनार हो जाते हैं। मुझे लगता है बेस्ट शायरी, बेस्ट कम्पोजिशन, बेस्ट सिंगिंग उस गाने की थी। मगर इन उन गानों का जिक्र हम करते हैं कितने साल बाद, 40 साल बाद, 45 साल बाद, 30 साल बाद, और ये जो गाने हैं जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं इन गानों को हमने अभी 10 साल दिया है, 15 साल दिया है, 20 साल दिया है। क्या होता है जब उस मुद्दे पे बात होनी चाहिए तो उसको उतना पीरियड देना बहुत जरूरी है। आपने जो म्यूजिक सुना है अभी जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे बच्चे मतलब जो मेरी बेटी है, जो मेरे जो बच्चे, उनका ऐसा है कि वो नहीं सुनते। ये केवल कुछ गाने ऐसे हैं जो उन्होंने कहीं रेडियो पर सुना, उनको नहीं पसंद है। मैं आपको ये बात इस बात की गारंटी दे सकता हूं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आज से 25-30 साल के बाद, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, केएल सहगल को मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो बोलते थे उनसे बड़ा सिंगर कोई पैदा ही नहीं हो सकता, उनको बोलते थे वो महान सिंगर हैं, उनकी कॉपी जो है वो रफी साहब ने भी की, मुकेश साहब ने भी की, सबने की, और मगर मुझे अगर केएल सहगल का तो मुझे एक भी गाना पसंद नहीं आता। तो ये क्या होता है, ये जनरेशन टू जनरेशन चीजें बदलती रहती हैं। आज से 20 साल बाद 10 साल बाद म्यूजिक कहाँ जाने वाला है उसका ना तो आपको अंदाजा है ना मुझे अंदाजा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा हमने उसको वक्त कम दिया हुआ है, अगर हम उसको पूरा उतना पीरियड देंगे तो, और डेफिनेटली चूंकि हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि वो म्यूजिक जो है हमने जो सुना है कुछ हद तक हमारे बच्चों को हम कुछ चीजें सुनाते हैं, कुछ उनको दिखाते हैं, तो वो चीजें उनको थोड़ी बहुत पसंद आती है तो गाते रहते हैं। बट इन लॉन्ग रन डेफिनेटली दैट इज नॉट बी द सेम काइंड ऑफ एनवायरमेंट जो हम सोच रहे हैं, वैसा आज से 10 साल बाद नहीं होगा। ये मैं आपको,
आप मेरी उम्र की जब बात कर ही रहे थे तो मैं आपको बता दूं कि मेरा मेरे टीन ईयर्स 80s और 90s में आपके गानों के साथ गुजरे हैं। मुझे याद है जब आप जब साजन रिलीज हुई थी तो मैं स्कूल में थी और मतलब दैट वॉज वन ऑफ द मूवीज, उसके गाने, माधुरी दीक्षित, एवरीथिंग वॉज सच अ बिग क्रेज कि हम लोग स्कूल से गए थे देखने कि भाई साजन देखने जाना है हमें। और
आपसे तो मिलना ही पड़ेगा एटलीस्ट कम से कम, क्योंकि आपसे मेरी बहुत बड़ी फैन होंगी क्योंकि आपका बचपन मेरी जवानी से शुरू हुआ है, तो डेफिनेटली जवानी का असर बचपन की
आज भी मैं जब सुनती हूँ मैं डेफिनेटली, मुझे आज भी साजन के गाने बहुत पसंद है, मुझे दिल के गाने आज भी पसंद है, लेकिन फिर भी मैं भी जब सुनती हूँ तो वो 50s के वो गीता दत्त के गाने, वो रफी साहब के गाने।
उसके पीछे आपको मैं रीजन दूं, क्योंकि आप क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई हैं, आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़ी हुई हैं, आप म्यूजिक समझती हैं, इसलिए आप उनकी मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि उस जमाने की चीजों में गहराइयां ज्यादा थी, ठहराव ज्यादा था, माहौल क्यों वो था, इसलिए क्योंकि उस वक्त का दौर वैसा था, कल्चर वैसे थे, लोग वैसे थे। तो अब जैसे जैसे अभी और आप भी कहीं ना कहीं उस दौर से काफी करीब से जुड़ी हुई है, इसलिए उस दौर की चीजें आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। मगर जैसे जैसे ये ब्लड थोड़ा थिन होता जाएगा, आपके बच्चे जब आएंगे, आपके बच्चों के बच्चे जब आएंगे, तो डेफिनेटली वो 50s के और 60s का म्यूजिक नहीं सुनेंगे। ये आप बिल्कुल मेरी बात याद रखें। और जब आपका बच्चा या आपके बच्चे का बच्चा जब जवान होगा, तो आपको मेरी बात कहीं ना कहीं मेरी ये आवाज आपकी कानों में गूंज रही होगी कि रमी जी ने जो कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मुझे जो मैंने दौर देखा है, वो जो 60s का मुझे गाना, शंकर जयकिशन के गाने, ओपी नैयर के गाने, और गाने मुझे ज्यादा पसंद थे, बसरते की आर डी बर्मन और रफी। बट धीरे धीरे जैसे जब मैं बड़ा होता गया और जवान होता गया, तो उन लोगों का म्यूजिक थोड़ा मुझे वीक लगने लगा। फिर मुझे लक्ष्मीकांत, आर डी बर्मन, कल्याण जाना जी का म्यूजिक ज्यादा अच्छा लगने लगा, क्योंकि तब मैं जवानी की दहलीज पे कदम रख चुका था। तो जैसे जैसे जनरेशन घटती जाती है, वैसे वैसे उन चीजों का प्रभाव भी कम होता है।
आप बहुत सही कह रहे हैं। हाँ, आप यू हैव अ पॉइंट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शायद आपका कहना बहुत सही है कि एक जनरेशन टू जनरेशन में फर्क तो पड़ता है। अच्छा, हम लोग तो शायद इस बारे में बात पूरी रात करते रहेंगे, पूरे दिन करते रहेंगे, तो हमें आगे बढ़ाना है बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। तो आप हमें जल्दी से ये बताइए कि आज के दौर में आपको ऐसा कौन सा लिरिसिस्ट है जो आपको लगता है कि हाँ भाई बनने में दम है?
देखिए, अभी जितने हैं उनमें किसी में एक कमर्शियल लिरिसिस्ट की 100% क्वालिटी मुझे अभी तक किसी में नजर नहीं आई है। बट डेफिनेटली एक राइटर है जो अच्छा कह रहे हैं, मगर उनकी प्रॉब्लम क्या है, इज टू बिजी इन अदर वर्क्स आल्सो। प्रसून जोशी, जिन्होंने रंग बसंती लिखी है, जिन्होंने, मगर उनका क्या, उनका एक रंग है। मैं 100% लिरिसिस्ट मजरू सुल्तानपुरी को मानता हूँ, आनंद बख्शी को मानता हूँ, जिन्होंने गम दिए मुस्तकिल भी लिखे, और अपन को एक नजर देखो ना, और पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, और हम हैं मताए कुशा और बाजार की तरह। तो जब तक इतनी वर्सटैलिटी राइटर में नहीं होती, तब तक मैं उसको 100% लिरिसिस्ट नहीं मानता। मैं लिरिसिस्ट बार बार एक ही लफ्ज में आपको जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लिरिसिस्ट और पोएट में बहुत बड़ा फर्क है।
फर्क होता है।
लिरिसिस्ट वो चीज है जो पानी की तरह होना चाहिए, जिसको जो भी रंग में ढाला जाए ढल जाए। तो ये क्वालिटी अभी तक तो मुझे किसी में नजर नहीं है। डेफिनेटली कुछ लोगों ने कुछ गाने बहुत अच्छे लिखे, मगर वही वो जो है जैका फाल कोई अभी तक दिख नहीं रहा।
हाँ, एक मास्टरी आपको नहीं दिख रही, बिल्कुल। अच्छा समीर जी, आप क्या पसंद करते हैं, आप गाने लिखें और उसमें म्यूजिक ढाला जाए, या फिर आपको म्यूजिक दिया जाए, आपको कौन से किस में ज्यादा मजा आता है?
सवाल ही बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल रहा है, और लोगों को सुनने वालों को पूछने वालों को कहीं न कहीं एक रूढ़वादी सवाल जो है कहीं बसा हुआ दिल में, कि ये जो पुराने लोगों का मानना था कि भैया ट्यून पे गाना लिखना जैसा लगता है कि क्राइम की तरह है, किसी शायर ने कहा है कि भाई एक मुर्दे को कई हिस्सों में काट करके दफन कर दे जैसा है, मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। और शायद आप लोगों को इसके बारे में कम जानकारी होगी क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री के राइटिंग की टेक्निकलिटी नहीं जानती हैं। जो लोग फिल्म राइटिंग जानते हैं वो हमारी इस बात से 100% वो सहमत हैं। और मैं आज आपने सवाल पूछा है तो मैं रेडियो के माध्यम से लोगों को बताना भी चाहूंगा कि ये ऐसा नहीं है, ये होना ये चाहिए कि आप एक मिरर के दोनों पहलू आप देखिए, दोनों साइड पर अगर आप नजर डालेंगी, तो अगर ट्यून पे लिखना कोई गुनाह है तो लफ्जों पे बनाना भी एक गुनाह है। ट्यून पे लिखने के लिए इसलिए लोग बोलते हैं कि आपको एक ट्यून दे दी जाती है, आप उस दायरे में कैद हो जाते हैं, आप उस ट्यून में लफ्ज भर देते हैं और फिलिंग द ब्लैंक की तरह उसको कंप्लीट कर देते हैं। मगर उसका दूसरा वर्सन अगर आप देखेंगे, अगर म्यूजिक डायरेक्टर को आप लफ्ज लिख के देते हैं तो उसको अपने ट्यूनों को उन्हीं लफ्जों में कहीं ना कहीं ढालने की मजबूरी आ जाती है। मेरा ऐसा मानना है कि फिल्म का काम ऐसा होना चाहिए कि अगर हमने बहुत अच्छा लिखा है तो उसको कंपोजर को कंपोज कर लेना चाहिए, अगर उसने बहुत कुछ अच्छा कंपोज किया तो मुझे उस पर लिख देना चाहिए।
बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छा बोला आपने। समीर जी, एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल, आजकल हर गाने में पंजाबीफिकेशन का बहुत ज्यादा चलन हो गया है। माही, माहिया, सोनिया, मगदा, लगदा, आई मीन यू नो इट्स अ प्लेथोरा ऑफ पंजाबी वर्ड्स। आपको क्या लगता है ये कहीं ये क्रिएटिविटी को मार रही है?
एक बहुत सीधा सा उसका असर है, ये जो ब्लैक म्यूजिक आजकल एक नया वर्ड हम लोग की इंडस्ट्री में आया है। ब्लैक म्यूजिक का मतलब है ये वर्ल्ड म्यूजिक जो हमारे सामने आया, जब हम वर्ल्ड म्यूजिक से कम्पीट करने लगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में आप देखेंगे पंजाबियों की एक जो कम्युनिटी है वो म्यूजिक फील्ड में बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो म्यूजिक में, और पंजाबी कम्युनिटी ऑल ओवर वर्ल्ड में कुछ कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा मात्रा में वो लोग है भी। म्यूजिक में भी आप देखेंगे गुजराती लोग कम आपको सुनाई पड़ेंगे, बंगाल कम सुनाई पड़ेगा, साउथ इंडिया कम सुनाई पड़ेगा, पंजाब और नॉर्थ का म्यूजिक जो है हमेशा सदियों सदियों से काफी पॉपुलर रहा है और चलता रहा है। तो चूंकि वर्ल्ड वाइड वो लोग बहुत ज्यादा हैं और उस तरह के म्यूजिक को बीच में वो इवन हिप हॉप चल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड पंजाबी, एक तो लैंग्वेज आजकल एक तो खिचड़ी लैंग्वेज हो गई है। मैं आपको अपने ही गाने का एग्जाम्पल,
इंग्लिश का भी देख लीजिए,
मैंने अपने गाने का एग्जाम्पल आपको देता हूँ। केवल मुखड़े में 3 लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया मैंने और गाना बहुत बड़ा हिट गाना है, फिल्म आई थी फिर हेरा फेरी, इमेज का गाना है कितने अरमान मान 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 राजस्थानी थारे वास्ते सोनिए पंजाबी ऑल डे ऑल नाइट इंग्लिश मुझे याद सताए तेरी हिंदी। सो आप देखिए ये इतना जो प्रयोगवाद चल रहा है इसके पीछे रीजन ये है वी आर कम्पिटिटिंग विद द वर्ल्ड, तो उसमें थोड़ी हिंदी थोड़ी इंग्लिश थोड़ी उर्दू, हर भाषा का थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है और वही मेरे ख्याल से उसकी पॉपुलरिटी की एक वजह है क्योंकि ये चेंज ओवर है। कोई फॉरेनर जब एक गाना सुनता है तो ऑल डे ऑल नाइट भी सुन लेता है तो उसको लगता है यार कुछ कहीं ना कहीं हमारा कोई वर्ड सुनाई दे रहा है, तो पंजाबी सुनता है तो उसको लगता है सोनिए का, तो ये कहीं ना कहीं उस चेंज ओवर का एक असर है और
ग्लोबलाइजेशन
है और उसका एक इफेक्ट जो है वो लैंग्वेज को थोड़ा सा मिक्स करके रख दिया।
जी समीर जी, हम जल्दी से आपके लिए थोड़े मैसेजेस पढ़ देते हैं क्योंकि हम वी आर रनिंग रियली शॉर्ट ऑफ टाइम, बट इतना मजा आ रहा है आपसे बात करके कि मन नहीं कर रहा बंद करें, बट फिर भी मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। ये आदि जी ने लिखा है कनाडा से, समीर जी व्हेन आई हियर सम ऑफ योर सॉन्ग्स इट सिंपली अमेजेस मी हाउ यू अडैप्ट योरसेल्फ स्विच सो एफर्टलेसली विद सच ईज टू केटर टू द क्लासेस एंड द मासेस। इफ ऑन वन हैंड वी हैव Barry Pia or Haseen Wadia from you, and then on the other hand we have Dhak Dhak or Chunri Chunri again from you. Well, I personally like Haseen Wadia, Barry Pia type of songs more, so I'll be selfish and hope that you pen more such songs. Thank you so much and wish you all the best.
Only for him.
Okay, I'm sure Adi बहुत खुश हो जाएंगे। माही ने लिखा है, समीर जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम, वी रियली अप्रिशिएट दैट। आई हैव टू से दैट यू आर वन ऑफ द बेस्ट लिरिसिस्ट इन बॉलीवुड एंड आई एब्सोल्युटली लव योर सॉन्ग्स। योर सॉन्ग्स हैव सो मच मीनिंग इन देम। आई डोंट लाइक द सॉन्ग्स विद नो मीनिंगफुल पोएट्री, बट योर सॉन्ग्स आर ऑलवेज सो वेल रिटन। माई फेवरेट सॉन्ग्स आर एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, तेरे नाम कुछ कुछ होता है, यू आर माई सोनिया बड़ी मुश्किल है एंड मेनी मोर। आई थिंक यू आर वन ऑफ द most gifted lyricist and we are proud of your work. Mahi ne likha hai.
Thank you. Give my regards to him.
Bilkul. Cat likhti hai, Sameer ji, I became a fan when I heard the soundtrack of Aashiqui. The music and the songs really I feel changed the music industry at the time when it was needed, really needed the most. To aur ye baat isse main bilkul sehmat hu. Baat sahi hai. Aashiqui मेरे ख्याल से अदर देन आमिर खान की क्या
दिल
थी वो कहते हैं बड़ा नाम करेगा, हाँ कयामत से कयामत तक, ये दोनों इन दोनों मूवीज में एंड फॉलोड बाय मैंने प्यार किया, इन तीनों मूवीज में जिसमें मेरे ख्याल से आशिकी ने सबसे ज्यादा मतलब सबसे पहला वो किया था, एक चेंज द इंडस्ट्री टूवर्ड्स म्यूजिक,
नया वाइब, नया जो एक नई लहर सी जागी थी उस फिल्म की म्यूजिक से।
हाँ, और शायद वो सच पूछे तो एक डेकेड लॉन्ग एक सूखा पड़ा हुआ था उस
दैट इज द हाईएस्ट सेल म्यूजिक इन टिल टुडे।
जी टिल टुडे आई अग्री, इट्स लाइक क्योंकि वो ऐसा था कि जैसे सूखे के बाद
बाढ़ आ गई, बारिश भी नहीं बाढ़ आ गई, करेक्ट करेक्ट।
हाँ जी बिल्कुल। अच्छा प्रेरणा जी ने लिखा है, समीर जी यू आर वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लिरिसिस्ट इन द इंडस्ट्री एंड हैव रिटन सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, थैंक यू फॉर गिविंग अस सच अनफॉरगेटेबल वर्ड्स व्हिच गिव द सॉन्ग इट्स चार्म।
थैंकिंग एवरीवन
हमारे पास,
आई विल जस्ट टेल देम ओनली वन थिंग बिकॉज आई एम सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ देयर लव एंड blessing and I will definitely appreciate if they will continue this process.
جی ہمیں وقت ہو گیا کہ ہم یہاں پہ آج ودا لیں. جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہمارے لیے آپ کچھ سنا دیں.
ضرور. ابھی کل رات کی ایک بہت ہی تر و تازہ کویتا ہے اور میں یہ کویتا میں نے گانے سے انسپائر ہو کے لکھا ہے, اس لیے میں اس گانے کا ذکر بھی کرنا چاہوں گا کہ گلزار صاحب کا ایک گانا مجھے بہت پسند ہے کہ تیرے معصوم سوالوں سے پریشان ہوں میں. تو میں رات کو سویا تھا, میری نیند کھلی اور میں نے ایک گانا لکھا, بہت نیا انداز, ابھی تک کسی فلم میں گانا آیا نہیں ہے, مگر آپ کے لیے میں ضرور چاہوں گا کیونکہ میرے لسنرز اس کو سنیں. کہ
شکریہ.
بس زندگی بس, بس زندگی بس, اور اٹھا نہیں سکتا میں تیرے درد و غم کے ترکش, بس زندگی بس. تو ایسی لائنیں, ایسی پنکتیاں زندگی میں بہت کم آتی ہیں, اور جب کبھی کوئی نہ کوئی ایسا موڑ آتا ہے جب ہم زندگی کو بہت قریب سے جیتے ہیں. اور ایک بہت خوبصورت شعر اپنے ان تمام نوجوان دوستوں کے لیے, ان تمام نوجوان لڑکیوں کے لیے جو میری بہت بڑی فین ہیں, اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کسی بھی چیز کی انتہا ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے, ایک دو لائنیں, دو پنکتیاں بہت جلدی سناتا ہوں. کہ آئینہ بار بار دیکھے وہ میرا دل بے قرار ہو جائے, آئینہ بار بار دیکھے وہ میرا دل بے قرار ہو جائے, مجھ کو ڈر لگتا ہے کہ اس کو کہیں آئینے سے نہ پیار ہو جائے. تو تھینک یو ویری مچ, اور میں آپ لوگوں کی دعاؤں کا بڑا شکر گزار ہوں, آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں, اور گیتکار سمیر ہمیشہ یہی چاہیں گے کہ آپ کا پیار اور آپ کی محبت ہمیشہ تاعمر مجھے ملتی رہے. تھینک یو ویری مچ.
تھینک یو ویری مچ سمیر جی, اور آپ کو بہت بہت آگے کے لیے آل دا بیسٹ فرام آل آف اس. ہم یہی آشا کریں گے کہ آپ تاعمر ایسے ہی لکھتے رہیں, آپ ہمیشہ ہمیں اتنے ہی خوبصورت گانے دیتے رہیں, اینڈ آل دا بیسٹ فار ایوری تھنگ ان لائف.
تھینک یو.
سو فرینڈس, ہیئر آئی say goodbye today. Today we had lyricist, the great Sameer.